सोमवार 5 सितंबर दिन भर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। कश्मीर में सर्वदलीय टीम का दौरा पूरा, गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हुर्रियत नेताओं का रवैया कश्मीरियत नहीं।
इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, वहाँ से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता।
G20 की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया चरमपंथ का मसला, अमरीका और रूस में सीरिया पर तनातनी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक पार्टी को बड़ी कामयाबी, चीन के दबदबे को मिल सकती है चुनौती।
It shows how Hong Kong people wants to change and
आजम खां के बयानों का निशाना अब उनकी ही पार्टी, लेकिन बड़े नेता खामोश, होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार तृप्ति श्रीवास्तव से। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भारत प्रशासित कश्मीर का दौरा खत्म हो गया है। श्रीनगर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कश्मीर के हालात से केंद्र सरकार, संसद और देश की जनता खुश नहीं है। गृहमंत्री ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारियों से भी बातचीत की और सब लोग चाहते हैं कि कश्मीर में शांति बहाल हो। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के डिफेंस मिनिस्ट्री इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ। अधिकारियों के मुताबिक दो धमाकों में करीब 24 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हुए हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि पहले धमाके के बाद सुरक्षाकर्मी और नागरिक घायलों की मदद करने को दौड़े, तभी दूसरा धमाका हो गया। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा है कि वह क्षेत्रीय चुनावों में मेक्लेनबर्ग राज्य में अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेती हैं। मार्केल की पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन यानी CDU नतीजों में तीसरे स्थान पर आई है। सोशल डेमोक्रेट पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। चीन में G20 के समिट में हिस्सा लेने गई मार्केल ने कहा कि चुनाव में पलायन का मुद्दा क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ गया। मार्केल ने कहा मैं मेक्लेनबर्ग में कल आए नतीजों से बेहद नाखुश हूं। ये खास तौर से इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राज्य सरकार में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने इलाके के विकास की कोशिशें की, अच्छा काम भी हुआ, बेरोजगारी घटी, अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। दुर्भाग्य से हमारे उम्मीदवार इसका फायदा नहीं उठा पाए क्योंकि क्षेत्रीय चुनाव में शरणार्थियों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर दिया गया। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने इस्लामी तीर्थस्थल पर सालाना होने वाले हज को लेकर सऊदी अरब और उसकी व्यवस्था पर सख्त हमला किया है। इस साल हुए हज को लेकर दिए गए एक बयान में आयतुल्ला ने कहा कि तीर्थस्थलों को कैसे चलाया जाए, इसे लेकर इस्लामी दुनिया को फिर से विचार करना चाहिए। तेहरान और सऊदी अरब के अधिकारियों के बीच नए इंतजामों को लेकर हुई बातचीत टूटने के बाद कोई ईरानी इस साल आधिकारिक तौर पर हज यात्रा में शामिल नहीं हो रहा है। सीरिया में सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं और कम से कम 30 लोगों की मौत हुई है। ये धमाके सीरिया सरकारी के नियंत्रण वाले इलाके और कुर्द नियंत्रण वाले इलाकों में हुए हैं। सबसे बड़ा धमाका सीरिया के तटीय इलाके टारटूस में हुआ है। अन्य धमाके होम्स, दिमिश्क और कुर्द नियंत्रण वाले उत्तर पूर्वी शहर हस्काह में हुए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आपने समाचारों में सुना, भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में कश्मीर गए प्रतिनिधिमंडल का आज घाटी में दूसरा दिन था। राजनाथ सिंह के मुताबिक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सैकड़ों छात्रों, व्यापारियों, नेताओं और दूसरे लोगों से मुलाकात की। हालांकि अलगाववादी नेताओं से उनकी कोई बातचीत नहीं हो सकी। दो दिन का ये दौरा आज पूरा हो रहा है। इस बीच आज घाटी में फिर बंद है और कई जगहों से झड़पों की खबरें आई हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए रियाज मसरूर से।
कड़ी सुरक्षा और तनाव के बीच भारतीय पार्लियामेंट के प्रतिनिधि मंडल ने श्रीनगर में भारत का पक्ष करने वाली तकरीबन सभी पार्टियों और आम सामाजिक कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष और भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया कि उन्होंने दो दिन के भीतर 300 लोगों से बातचीत की है। राजनाथ सिंह का कहना था कि जो लोग अलगाववादियों से जेलों या इनके घर मिलने गए थे वो इनका निजी निर्णय था।
जो हमारे डेलीगेशन के कुछ सदस्य गए थे हुर्रियत के नेताओं से मिलने, वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए। हम लोगों ने हाँ कहा था, ना कहा था। वहाँ से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो
ताहम उन्होंने हुर्रियत नेताओं की इस बात पर निंदा की कि उन्होंने द्वार पर आए सांसदों को वापस निकाल दिया। राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि कुछ दिनों में ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध अब पैलेट गन की जगह पावा गन का प्रयोग होगा। इस बीच प्रतिनिधिमंडल के श्रीनगर में मौजूद रहने के दौरान कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ें हुई, जिनमें अब तक कम से कम 400 लोग घायल हो गए हैं। प्रतिनिधिमंडल में सांसद असदुद्दीन ओवैसी, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद यादव और दूसरे सदस्यों ने निजी रूप से अलगाववादियों से मिलने की कोशिश की, लेकिन अलगाववादियों ने भेंट वार्ता करने से इनकार किया। मिस्टर ओवैसी ने कहा कि इसके बावजूद केंद्र सरकार को डायलॉग का प्रोसेस जारी रखना होगा।
इन्होंने वही कहा मुझसे कि भाई उनका फैसला हो चुका है, वो बात नहीं करेंगे, पर मेरा मानना यह है कि अभी बहुत जरूरी है कि 2010 में जो गलती हुई थी वो गलती ये सरकार ना करे, चाहे जम्मू कश्मीर की हो या मोदी सरकार हो, इसका फॉलोअप करना जरूरी है।
विश्लेषकों का कहना है कि नई दिल्ली और श्रीनगर के बीच स्पष्ट मुद्दों पर बातचीत का होना जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कानून विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शेख शौकत हुसैन कहते हैं,
उसकी अहमियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब हुर्रियत पसंद कयादत इसका बायकॉट करती है और ट्रेड बॉडीज भी इसका बायकॉट करती। जो लोग कहते हैं वो सुनना नहीं चाहते, जो वो सुनना चाहते हैं लोग वो कहते नहीं। बेसिक प्रॉब्लम यही, बुनियादी मसला यही।
गौरतलब है कि चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की 8 जुलाई को पुलिस ऑपरेशन में मौत के बाद कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया। 7 हफ्तों के दौरान अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 4,000 सुरक्षा कर्मियों समेत 10,000 से अधिक लोग घायल हैं। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
कश्मीर दौरे पर गए भारतीय नेताओं का दल सब कुछ होने के बाद भी हुर्रियत नेताओं तक नहीं पहुंच सका, और इस दौरे पर हमारी सहयोगी सलमान रावी भी नज़र जमाए हुए थे और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सलमान जी, स्वागत है आपका। ये बताइए कि आखिर कहाँ कमी रह गई, मतलब किस तरह से जो पूरा ये जो दौरा हुआ है उस दौरान जो नेताओं का रवैया रहा और हुर्रियत नेताओं का जो रवैया रहा, उसमें कहाँ गैप था, क्या वजह थी, किस तरह से ये जो है वो मुलाकात हो नहीं पाई?
देखिए, बहुत सारी बातें हैं जो इसमें आई हैं, हालांकि अभी इसकी बहुत पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि आधिकारिक रूप से तो बयान कुछ आ नहीं रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो आरोप एक लगाया जा रहा है वो ये है कि कोई फॉर्मल न्योता नहीं था सेपरेटिस्ट को, अलगाववादियों को ऑल पार्टी डेलीगेशन जो गया हुआ है उसकी तरफ से, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से, या फिर जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से। और जो न्योता गया भी था, ये कहा जाता है कि वो PDP के अध्यक्ष के तौर पर महबूबा मुफ्ती ने भेजा है। तो हालांकि अभी चूंकि उस पर ज़्यादा कुछ पता
लेकिन
नहीं,
ये कोशिश तो शायद उन्होंने उन तक ज़्यादा अपनी पहुंच बनाने के लिए ही की थी कि वो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर नहीं बल्कि लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर उनसे बात करना चाहती हैं, जहाँ तक मेरी समझ है।
हाँ, ये बिल्कुल सही है इसमें तो। हालांकि उन्होंने प्ली तो ये ली है कि उन्होंने इसीलिए किया है ताकि एक राजनीतिक दल जो कश्मीर में है उसकी प्रतिनिधि होने के नाते वो ये कर रही है। लेकिन इसमें बीच में ये CPM की तरफ से जो इंडिकेशंस मिला है कि जब उन्होंने जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के लोगों ने उसमें जो शामिल है उन्होंने देखा कि हुर्रियत के नेताओं के नाम नहीं थे उन लोगों की लिस्ट में, फहरिस्त में, जिनसे उन्हें मिलना था, तो उस पर भी थोड़ा।
राजनाथ सिंह आज बड़े निराश दिख रहे थे, क्या कुछ कहा है उन्होंने?
बहुत ही, आज तो पहली बार उन्होंने इतना बोला भी है। हालांकि बहुत निराश हुए वो कि वो हुर्रियत के नेताओं से बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, जैसे आपने रियाज की रिपोर्ट में सुना कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे लोग मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, ये तीन अल्फाजों का इस्तेमाल किया, उन्होंने पहले भी कर चुके हैं, और उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए।
इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, वहां से लौटने के बाद डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं है, और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, तो कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। जो लोग भी कश्मीर में पीस एवं नॉर्मलिटी चाहते हैं उन सभी से हम बात करने को तैयार हैं। केंद्र सरकार का जहां तक प्रश्न है, हम पूरी तरह से राज्य सरकार को सहयोग दे रहे हैं। राज्य सरकार भी महबूबा जी के नेतृत्व में हालात में सुधार लाने की कोशिश कर रही है।
अब ये इसमें इसके बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि जो हाई पावर्ड कमेटी थी जो ये पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए जो जिसका गठन किया गया था जुलाई महीने में, उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है, और वो पावा शेल्स जिसमें, हालांकि बहुत ये एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि किस तरह का ये होगा, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी इसके बारे में मिल रही है वो ये है कि इसमें जो मिर्चें हैं उसकी वजह से तो इसमें लॉस ऑफ लाइफ नहीं होगा। और ये था, लेकिन एक ये बात ज़रूर है कि इसके बावजूद, हुर्रियत के नेताओं के ना मिलने के बावजूद, जो डेलीगेशन गया है उसको उम्मीद है कि, क्योंकि उन्होंने तो और भी लोगों से बातचीत की है कश्मीर के लोकल ट्रेडर्स, अधिकारी और स्टूडेंट्स वगैरह से, जैसा कि कह रहे थे, तो जो नेता हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना था
रास्ता तो ज़रूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हम तो सुने सबकी बात, इसके लिए तो इतना बड़ा देश है, हम सब मिलके इसको लिए कुछ ना कुछ सुझाव देकर इसको शांति से निपटाने की कोशिश करना चाहिए।
और सीताराम येचुरी को भी लगता है कि साहब चूंकि पार्लियामेंटेरियंस गए हैं वहाँ पर और इसका हल बहुत जल्दी निकल जाएगा।
जी बहुत शुक्रिया सलमान इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब रुख करते हैं उस मीटिंग का जो चल रही है चीन के हांगजू शहर में, G20 की बैठक। इस बैठक में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चरमपंथ का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार समर्थित चरमपंथ को रोकने के लिए कड़े उपाय करने होंगे। उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा किधर था ये समझना मुश्किल नहीं है। मैंने कुछ ही देर पहले इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए बीजिंग में पत्रकार सैबल दास गुप्ता से बात की।
G20 के बैठक में मोदी साहब का इंटरवेंशन था और भारत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि G20 का जो मुद्दा है, टेररिज्म का जो मुद्दा है और टेररिस्ट के पीछे हम जो भाग रहे हैं, ये भाग तो रहे हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि स्टेट टेररिज्म जो है, जहां कुछ कंट्रीज खुद टेररिस्ट का काम करते हैं, उसका हम लोग कैसे सॉल्यूशन, जब तक G20 इस पर ध्यान नहीं देगी तब तक टेररिज्म का मसला जाएगा नहीं और दुनिया के आगे सबसे बड़ा संकट चालू रहेगा। उन्होंने कहा एक देश है जो साउथ एशिया में है और उसने इस रीजन में तनाव भर के रखा है टेररिज्म को मदद करके, तो उसका G20 और दुनिया के बड़े देश क्या सोच रहे हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया। पाकिस्तान का नाम नहीं लिया लेकिन बिल्कुल साफ था।
इसके अलावा जो है और जो मुद्दे उठाए गए होंगे आज G20 में, उसमें सीरिया के बारे में भी कुछ चर्चा हुई है, ऐसी खबरें आ रही है, क्या कहा गया है इस बारे में?
कल और आज दो दिन अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी जॉन केरी और इसके रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव के बीच में दो बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई। उसके बाद ओबामा और पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशिया के, दोनों में फिर मुलाकात हुई और एक ही चर्चा थी कि कैसे सीरिया का मसला ठीक किया जाए। अब सुनने में ये आ रहा है और रशिया के न्यूज एजेंसी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो बातचीत हुई ये ब्रेकडाउन हो गया है और ये आगे नहीं बढ़ा। और सुनने में ये आ रहा है कि रशिया चाह रही थी कि सीरिया के साथ अमेरिका अपने एक्शन कोऑर्डिनेट करें और दोनों मिलके सीरिया का मसला सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि पुतिन साहब ये चाहते थे कि एक साथ करने से रशिया का भी जो दबदबा है दुनिया के आगे, आज जब वो दबी हुई है आर्थिक तौर से, वो उभर आएगा, उठेगा। लेकिन अमेरिका ने इसको रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हम सीरिया के जो असाद रजीम है उसको बचाने के लिए कोई भी मदद आप लोग मांग रहे हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो रशिया चाह रही है, उसमें हम तैयार नहीं है, क्योंकि वो असाद जो अपने ही सिटीजन का जिसने खून किया उसको हम मदद करने के तैयार नहीं है। तो ये बेसिक मुद्दे पर दोनों में मतभेद हुआ और एक प्रकार का एग्रीमेंट जो रशिया चाह रहा था ये नहीं हो पाया। जाहिर है इसमें और भी कई बातें रही होगी, जैसे दो दो मीटिंगें दो फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में और फिर दो प्रेसिडेंट्स के बीच में फिर से मिले बात हुई। G20 के अंदर ये करने की इच्छा थी दोनों देशों की, सॉल्व करने की, वो नहीं हो पाया। दूसरी तरफ इजिप्ट और टर्की के प्रेसिडेंट्स को पुतिन भी मिले और ओबामा भी मिले और दोनों ने कोशिश की कि मिडल ईस्ट की समस्या पर इनका कोई, ये लोग अगर किस तरह से सॉल्व कर सके, तो दोनों ने इस बात पर जोर दिया और कोशिश तो अभी भी जारी है।
बीजिंग से स्थानीय पत्रकार सैबल दास गुप्ता, क्षमा कीजिएगा, भारतीय पत्रकार सैबल दास गुप्ता बता रहे थे G20 में हुई आज के दिन भर की हलचल के बारे में। और एक खबर आ रही है हांगकांग से, हांगकांग के कुछ युवा नेताओं ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में अहम जीत हासिल की है। कड़े चुनावी मुकाबले में रिकॉर्ड मतदान हुआ, लोकतंत्र समर्थक के नेताओं ने इतनी सीटें हासिल कर ली हैं कि वो चीन के दबदबे को चुनौती दे सकें, उन्हें वीटो का अधिकार भी मिल सकता है। पूरा ब्यौरा सुनिए कश्मीर शमाइल से।
चीन के नियंत्रण के बावजूद लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की नई पीढ़ी ने हांगकांग की विधान परिषद सीटों पर जो जीत हासिल की है उसमें बदलाव और स्वशासित समाज की तमन्ना दिखती है। मतदान 58% के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचा, जो समर्थकों के लिए काफी चौंका देने वाला आंकड़ा साबित हुआ। निर्वाचित लोगों में 23 वर्षीय नॉर्थन लॉ भी हैं। ये वही हैं जिनका साल 2014 में हुए अम्ब्रेला मूवमेंट में अहम योगदान था। अम्ब्रेला मूवमेंट की शुरुआत हांगकांग में 26 सितंबर 2014 में हांगकांग पुलिस के खिलाफ आंदोलन से हुई थी। इसे लोकतंत्र समर्थकों का सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन माना जाता है। इस बढ़त के बावजूद चीन समर्थकों की 70 सदस्यीय परिषद पर पकड़ बनी रहेगी। नॉर्थन लॉ की डेमोसिस्टो पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए अभियान चलाए और लोगों में जागरूकता पैदा की। नॉर्थन लॉ कहते हैं परिणाम लोकतंत्र आंदोलन के लिए प्रेरणा देने वाले हैं।
It shows how Hong Kong people wants to change and actually
इससे पता चलता है कि हांगकांग के लोग अब बदलाव चाहते हैं। यहाँ के लोग अब लोकतांत्रिक आंदोलन और देश के अच्छे भविष्य के लिए मतदान कर रहे हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति जिसने मुझे वोट दिया उसने इतिहास रचा है। मैं इन लोगों के साथ आने वाले अगले 4 साल तक के सफर का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये थे नॉर्थन लॉ के शब्द। शुरुआती परिणाम जारी करने में हुई देर से चिंता कुछ बढ़ सी गई थी, पर पूरा नतीजा सोमवार तक आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस पर चीन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक पार्टियों की जीत और रिपोर्ट सुना रही थी कश्फी शमायल।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
ये बीबीसी रेडियो है और आप दिन भर सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरिफ बेग का सुबह निधन हो गया। 82 साल के आरिफ बेग ब्लड शुगर से पीड़ित थे। आज सुबह 9 बजे अचानक उनके दिल ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद घर पर ही उनकी मौत हुई। उनके छोटे बेटे नूरुल हसन बेग ने बीबीसी से इस बारे में बातचीत की और बताया,
बीमार थे वो और 80+ थे, तो सुबह 6 बजे मेरे साथ ही थे वो और बात करते करते ही यार मुझे कंबल वगैरह उड़ा दे, तो मैंने कंबल उड़वा दिया था उनको। फिर वो हम सो गए थे, 2 बजे जब उठे तो हो चुका था एकदम।
अच्छा, मतलब अस्पताल ले जाने की नौबत भी नहीं आई?
नहीं, डॉक्टर घर पे ही आ गए थे, 2 डॉक्टर्स हैं वो घर पे ही आ गए थे, तो अस्पताल ले जाने का वक्त नहीं था।
तो वो पहले से भी कुछ बीमार चल रहे थे?
जी हाँ, पहले उनको शुगर भी थी और दूसरा 82+ थे।
जी जी,
तो बीमार भी थे, बेड रेस्ट पे, लेकिन चल फिर रहे थे, बाथरूम जाना, नमाज पूरी अदा हुई होगी यहाँ तो सब।
तो उन्हें कब सुपुर्द खाक किया जाएगा?
अभी ईशा की नमाज के बाद, यहाँ हमारे यहाँ 8:30 बजे ईशा की नमाज है, नमाज के बाद नमाज जनाजा होगी और उसके बाद उनको सुपुर्द किया जाएगा। जी,
बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरिफ बेग के छोटे बेटे नूरुल हसन बेग से ये बातचीत मैंने थोड़ी देर पहले ही की थी। भोपाल से 2 बार के सांसद रहे, मध्य प्रदेश से 2 बार के सांसद रहे आरिफ बेग ने भारतीय लोकदल के टिकट पर 1977 में लोकसभा का चुनाव जीता था। तब उन्होंने भोपाल में कांग्रेस नेता शंकर दयाल शर्मा को हराया था। इसके बाद उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। 1989 में उन्होंने बैतूल से केंद्रीय कांग्रेस के नेता असलम शेर खान को हराकर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। इमरजेंसी के दौरान जेल में रहे आरिफ बेग ने 1996 में बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहां उनका दिल नहीं लगा और फिर 2003 में फिर बीजेपी में वापस आ गए। इनके बारे में और चर्चा हम करेंगे अपने दूसरे कार्यक्रम में, फिलहाल रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। उत्तर प्रदेश के कद्दावर मंत्री आजम खान यूं तो अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब वो सीधे तौर पर अपनी ही पार्टी पर तंज कसने लगे हैं। कभी पार्टी को डूबता जहाज बता रहे हैं, तो कभी कुछ वरिष्ठ नेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं। कुछ बयानों की तो पार्टी में भी निंदा हो रही है, लेकिन पार्टी में बड़े नेताओं की आजम खान को नसीहत देने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्या है इसकी वजह और क्यों आजम ऐसे बयान दे रहे हैं, सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
अरे हमारे पास संत भी खड़ा होगा, सूफी भी खड़ा होगा, अरे हमने तो नाचने वाली को एमपी बना दिया।
रामपुर की एक सभा में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान इस भाषण में पार्टी की दरियादिली का सबूत दे रहे थे, लेकिन तालियां इसके पीछे छिपे तंज के चलते बज रही थी। आजम खान का इशारा किसकी ओर था, इस पर पार्टी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीति की ABCD जानने वाला भी ये समझ सकता है कि आजम साहब बात किसकी कर रहे हैं और इस बहाने उनकी उंगली अमर सिंह की ओर उठ रही है। हाँ, पार्टी नेताओं को आजम खान की इस भाषा पर जरूर आपत्ति है। पार्टी नेता जूही सिंह कहती हैं,
पॉलिटिक्स में हर सीनियर लीडर को अपने व्यक्तिगत रूप से सोचना चाहिए कि सही है कि गलत है, और ये अक्रॉस पार्टी में देख रही हूँ, इधर कुछ ज्यादा ही हो गया। बाकी जैसा कि आपने कहा कि वो किसके बारे में कह रहे हैं, ये वो बेहतर जानते होंगे सीनियर लीडर, लेकिन हाँ मुद्दा कि एकदम मैं पहले भी बात कह चुकी कि सबको अपनी भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।
आजम खान रामपुर में जब ये भाषण दे रहे थे उस समय उन्होंने मीडिया पर भी जमकर निशाना साधा और चुल्लू भर पानी में डूब मरने तक की सलाह दे डाली। ये सब वो उसी मंच से कह रहे थे जिस मंच से बाद में उन्होंने अपने छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान को राजनीति में उतारने की घोषणा की। वैसे तो आजम खान अपने कई बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं और बुलंदशहर गैंगरेप को सियासी साजिश बताने के मामले में वो कोर्ट के पछड़े में भी पड़ चुके हैं, लेकिन मीडिया से नाराजगी की वजह पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अखबारों में सेक्स रैकेट चलाने वाले एक व्यक्ति के साथ उनकी तस्वीर छापने को लेकर आजम खान बुरी तरह से नाराज थे। आजम खान पिछले दिनों समाजवादी पार्टी को भी डूबती नाव बता चुके हैं।
पानी के जहाज में सुराख हो जाए और डूबने का इम्कान हो जाए तो सबसे पहले चूहे भागो। अब ऐसे लोगों को जिन्हें ये खदशा अंदेशा होगा कि उन्हें शायद टिकट न मिले तो भागेंगे।
लेकिन उसी डूबती नाव में वो खुद भी सवार हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के इस बयान का अपने ढंग से बचाव कर रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव से पुराने संबंधों के चलते उन पर शायद ही कोई कार्रवाई हो। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि ये संबंधों का लिहाज तभी तक होगा जब तक कि पानी सिर के ऊपर से न निकल जाए। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जब आजम खान चटख नीले रंग का कपड़ा पहनकर पहुंचे तो सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं होने लगी। डूबते जहाज जैसे बयानों के साथ इस घटना के समीकरण भी बिठाए जाने लगे। विरोधी पार्टियों के कुछ नेताओं ने खुलेआम ये चर्चा भी शुरू कर दी कि उनकी BSP नेता के साथ कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन आजम खान को करीब से जानने वाले अभी भी यही कह रहे हैं कि ये सब उनकी आदत और साफगोई का नमूना है और कुछ नहीं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और दिन भर में अब बारी है आपके गिले शिकवे और खतों किताबत की, तो आपकी चिट्ठियां लेकर हाजिर हैं राजेश जोशी और वंदना।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं वंदना
जी। मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार।
और मुझे लगता है कि वंदना आप और हम एक लंबे अरसे के बाद श्रोताओं से मुखातिब हैं।
बिल्कुल।
तो आपकी पहली चिट्ठी।
बिल्कुल, चिट्ठी शुरू करते हैं। इन्होंने टाइटल दिया है तारीफ पत्र।
तारीफ पत्र, अच्छा।
नाम है अजीत कुमार मुर्मू, उम्र 25 साल, BA पार्ट 2 के छात्र हैं, पूर्वी टुंडी धनबाद से हैं।
धनबाद यानी झारखंड के।
जी, कहते हैं कि जब से होश संभाला है तब से BBC का नियमित श्रोता हूँ। ये मेरा पहला पत्र है और अगर मेरा पत्र शामिल होता है तो अगली बार जरूर प्रतिक्रिया दूंगा।
अच्छा, प्रतिक्रिया इस बार नहीं दी है, इस बार ये गारंटी चाहते थे कि पत्र शामिल हो जाए तब प्रतिक्रिया दें। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप मुर्मू साहब अगली चिट्ठी में अपने जो कार्यक्रम है उनके बारे में लिखिए, क्या आपको पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और आप हमसे क्या उम्मीद करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे, लेकिन लिखिएगा जरूर।
जी, सिलसिला शुरू हो गया,
जारी रखिएगा। जी हाँ
जी। और अगली जो चिट्ठी है पोस्ट कार्ड है, हमें लिखते रहते हैं फारूक अब्दुल्ला फिजा साहब, लक्ष्मीपुर रक्सौल बिहार से। ये लिखते हैं कि ब्रजेश उपाध्याय जी की वॉशिंगटन डायरी सुनी, बहुत अच्छी लगी। सच है कि जब कोई परिवार अपने बच्चे को किसी हॉस्टल में रखने जाता है तो पढ़ाई के साथ साथ उस बच्चे को कई स्वतंत्र निर्णय भी लेने पड़ते हैं। वास्तविक एवं सजीव रिपोर्ट के लिए धन्यवाद।
जी, तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर Washington DC में बैठे हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय तक आपकी बात पहुँच ही जाएगी, और उनकी तरफ से मैं पहले से ही आपको शुक्रिया कह देता हूँ कि आपको ये डायरी पसंद आई।
जी, अगला जो पोस्ट कार्ड है इस पे लिखा है, ये मेरा पहला पत्र जरूर है, शामिल कीजिएगा, लेकिन इनका नाम कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
नाम तो खैर अभी हम पढ़ेंगे ही, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो श्रोता हमें पहली बार चिट्ठी लिखते हैं वो ये जरूर लिख देते हैं कि मेरी पहली चिट्ठी है, लेकिन मैंने कोई बहुत ही कम पत्र ऐसे हैं जिसमें श्रोता लिखते हो कि मेरी दूसरी चिट्ठी है, आप इसको शामिल कीजिएगा, यानी सिलसिला टूट न जाए मेरा इशारा।
लेकिन इसमें एक अजीब बात यह है कि इन्होंने ये जरूर लिखा है पहला पत्र है, लेकिन ये भी लिखते हैं कि नियमित श्रोता है, 1996 से सुन रहे हैं।
लेकिन चिट्ठी हो सकता है पहली बार लिखी हो, मैं देखता हूँ जरा, इसमें बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में इन्होंने लिखा है
और लिखावट में समझ नहीं आ रहा है,
समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने,
मैं इनकी बात जरूर समझ पा रही हूँ, ये कह रहे हैं कि मजबूरन मुझे पत्र लिखना पड़ रहा है क्योंकि जब से कि जब से मणिका ठाकुर आपके कार्यक्रम से हटे हैं तब से बिहार की सुध लेने वाला कोई
जी हाँ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये लगता है कि बिहार से मणिकांत ठाकुर, उत्तर प्रदेश में रामदत्त त्रिपाठी वगैरह संवाददाता जब से बीबीसी में नहीं है तो पूरी तरह से हम उस राज्य के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ नए श्रोताओं की ये भी राय है कि रेडियो के कार्यक्रम जिस तरह से हो रहे हैं उनमें उनको पूरी अच्छी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ होती हैं या जो खबर होती है वो मिल जाती है। समय बदलता है, लोग बदलते हैं और इस परिवर्तन को हम स्वीकार
जी, और बाढ़ में बाढ़ को लेकर हाल फिलहाल में पिछले दो
बिहार
तीन हफ्तों
से
में
बिल्कुल
बहुत रिपोर्टिंग की हुई है,
रिपोर्टिंग बहुत, उत्तर प्रदेश से भी समीर आत्मज मिश्र कर रहे हैं, आप सुनिए और कार्यक्रमों के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए
जी। तो अब कुछ ईमेल भी ले लें।
जी हाँ बिल्कुल, आज ईमेल वाले श्रोता थोड़ा नाराज ना हो जाएं कहीं।
जी। तो कई सारे ईमेल आए हैं विवेचना को लेकर जो मदर टेरेसा पर हुई। सीतामढ़ी बिहार से सुजीत कुमार हैं, मधुबन मऊ उत्तर प्रदेश से अवधेश शर्मा हैं, इन सब ने तारीफ की है और कहा है कि वाकई रेहान जी जिस किसी की विवेचना करते हैं उसमें पूर्णतः खो जाते हैं।
बिला शक इसमें कोई दो राय नहीं है कि रेहान फजल जिस भी विषय को उठाते हैं उसमें वाकई गंभीरता से रिसर्च करते हैं और बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं
जी। और बहुत सारे पत्र आज पहले जो
अच्छा,
फर्स्ट लेटर है
फर्स्ट टाइमर्स जिसे अंग्रेजी में कहते हैं
जी। अभिषेक गौरव हैं, गांव घगरी, जिला मुजफ्फरपुर बिहार, इनके गांव का नाम बड़ा अच्छा लगा मुझे।
जी
ये कहते हैं कि शामिल कीजिएगा तो धन्यवाद, अन्यथा नहीं।
अगर पत्र शामिल हुआ तो धन्यवाद, नहीं तो धन्यवाद नहीं। अरे मुझे
जी,
बहुत पसंद आया,
फिर गुजारिश भी की है प्यार से कि पहला पत्र है ले लीजिए।
कह रहे हैं
इंडिया बोल में कम से कम 95,000-96,000 बार फोन लगाया, कभी नहीं लगा, थोड़ा दुखी हूँ। वैसे आप सब अच्छे हैं पर दिव्या आर्य, स्वाति और वंदना ये मुझे सबसे
एक बार
अच्छे लगते हैं।
नाम इनका जरूर बता दीजिए।
इनका नाम है अभिषेक गौरव।
अभिषेक गौरव साहब आपने कोशिश की इंडिया बोल में शामिल होने की, सफल नहीं हो पाए, अब आपने अपने फोन नंबर हमें भेज दिए हैं तो हम कोशिश करेंगे अगली बार आप जरूर इस कार्यक्रम में शामिल हों। इसी के साथ मैं अब पता बता देता हूं क्योंकि हमारे पास समय बचा नहीं है। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो नोट कीजिएगा hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
और अब खेल समाचार लेकर स्टूडियो आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्ता जी। आदेश जी, यूएस ओपन में क्या कुछ उलटफेर करवाया आपने आज?
जी देखिए, पुरुष एकल वर्ग में कल एक बड़ा उलटफेर तब हो गया जब चौथी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल चौथे दौर में 24वीं वरीयता हासिल फ्रांस के लुकास पायलट से कड़े संघर्ष के बाद 6-1, 2-6, 6-4, 3-6, 7-6 से हारकर बाहर हो गए। यह मुकाबला 4 घंटे 7 मिनट चला। लेकिन शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच, फ्रांस के जो विल्फ्रेड सोंगा और गेल मॉनफिल्स की जीत का सिलसिला जारी है, ये सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। महिला एकल वर्ग में भी दूसरी वरीयता हासिल जर्मनी की एंजेलिक कर्बर, सातवीं वरीयता हासिल इटली की रोबर्टा विंसी, डेनमार्क की कैलिन वोजनियाकी और लातविया की अनस्तासीजा सेवत्सोवा भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। इनके अलावा मिश्रित युगल वर्ग में भारत की सानिया मिर्जा और उनके जोड़ीदार क्रोएशिया के इवान डोंडिक, दूसरे दौर में चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकुआ और क्रोएशिया के मारिन द्रागाजा से 6-3, 6-4 से हार गए।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए, और आपसे अगले कार्यक्रम में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब विदा लेने का वक्त आ गया है तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का भारत प्रशासित कश्मीर का दौरा खत्म हो गया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर के हालात से केंद्र सरकार, संसद और देश की जनता खुश नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के डिफेंस मिनिस्ट्री इलाके में एक आत्मघाती हमला हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक 2 धमाकों में करीब 24 लोग मारे गए हैं और 90 लोग घायल हुए हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मार्केल ने कहा है कि वो क्षेत्रीय चुनावों में मैकलेनबर्ग राज्य में अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेती हैं। मार्केल की पार्टी CDU नतीजों में तीसरे स्थान पर आई है। BBC समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया तृप्ति श्रीवास्तव ने और आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। आपसे डेढ़ घंटे बाद घटनाचक्र में दोबारा मुलाकात होगी। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।